एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो दिल को छू भी लेती है और शायद दिमाग को झकझोर भी देती है। जोन डिडियन की किताब है द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग।
हाँ, ये किताब अचानक आई मुसीबत और दुख की जो भूल भुलैया होती है ना, उसमें एक बहुत गहरा सफर है।
और जोन डिडियन, पहले उनके बारे में थोड़ी बात कर लें।
बिल्कुल, जॉन डिडियन 1934-2021 अमेरिका की बहुत ही जानी मानी लेखिका थी। मतलब निबंध, उपन्यास, पत्रकारिता सब में उनका बहुत नाम था।
हाँ, उनकी लिखने का स्टाइल बहुत खास था, है ना, एकदम सटीक, कम शब्दों में ज्यादा बात कहना।
हाँ बिल्कुल, सधी हुई पैनी नजर और अंदाज जैसे किसी सर्जन की छुरी चलती है ना वैसे।
उनकी पहले की किताबें भी, जैसे स्लाउचिंग टुवर्ड्स बेथलहम या द वाइट एल्बम, वो समाज और इंसान के मन को समझने का एक नया ही नजरिया देती थी। और ये किताब द ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग, ये सिर्फ दुख की कहानी से कहीं ज्यादा है, जैसा आपने कहा।
सही बात है, ये उस मुश्किल वक्त में लिखी गई जब डिडियन पर एक के बाद एक मतलब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनके पति जॉन ग्रेगरी डन, जो खुद भी लेखक थे, उनकी अचानक मौत हो गई। और ठीक उसी वक्त उनकी बेटी क्विंटाना रू भी बहुत ज्यादा बीमार थी, मतलब मौत से जूझ रही थी।
तो ये किताब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये एक दुखद कहानी है?
नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, इसकी अहमियत इस बात में है कि ये दुख की परतें खोलती है, खास तौर पर जिसे डिडियन मैजिकल थिंकिंग कहती है, मतलब जादुई सोच।
जादुई सोच, ये क्या है?
हाँ, हम इस पर आगे बात करेंगे, पर ये किताब एक बहुत ही ईमानदार खुद का विश्लेषण करने वाली पड़ताल है। ये दिखाती है कि जब एक बेहद समझदार, सब कुछ नियंत्रण में रखने वाला दिमाग जिंदगी की सबसे बेकाबू उथल पुथल भरी सच्चाई से टकराता है।
मतलब अचानक आई ऐसी क्षति जिसे बदला नहीं जा सकता।
बिल्कुल, तो तब होता क्या है? ये किताब इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है।
चलिए, तो फिर उस एक साल के सफर पे चलते हैं जिसे डिडियन ने इस किताब में उतारा है। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने बताया, कि डिडियन उस वक्त एक कामयाब लेखिका थी।
हाँ, और अपने पति जॉन के साथ उनका रिश्ता करीब 40 साल पुराना था। और ये रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, बल्कि सोचने समझने वाले साथियों का भी था। ये उनकी जानी पहचानी, एक तरह से कहें तो बसी बसाई दुनिया थी।
और फिर वो पलाया।
हाँ, जैसा डिडियन लिखती भी हैं बहुत मार्मिक तरीके से, जिंदगी तेजी से बदलती है, जिंदगी एक पल में बदल जाती है। 30 दिसंबर 2003 की शाम,
क्या हुआ था उस शाम?
वो और जॉन रात के खाने पर बैठे थे, बातें कर रहे थे, और जॉन अचानक गिर पड़े। बस
ओह, और फिर?
फिर वही 911 को फोन करना, एम्बुलेंस, अस्पताल, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल था।
और उस वक्त डिडियन की प्रतिक्रिया आपने बताया था थोड़ी अलग थी।
हाँ बिल्कुल, वो जैसे एक रिपोर्टर की तरह बर्ताव कर रही थी, एकदम शांत, बस तथ्यों पर ध्यान दे रही थी। कौन डॉक्टर है, क्या कहा जा रहा है, शायद ये उस भयानक सदमे से बचने का उनका अपना तरीका था।
हाँ, हो सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा था ना, उनकी बेटी भी तो।
बिल्कुल, साथ ही साथ उनकी बेटी क्विंटाना की गंभीर बीमारी का संकट भी चल रहा था, निमोनिया, फिर सेप्टिक शॉक, कोमा। तो एक तरफ पति की अचानक मौत का सदमा, दूसरी तरफ बेटी की जिंदगी का सवाल, मतलब दुख और डर के बीच वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी।
कल्पना करना भी मुश्किल है।
और यहीं से उसी माहौल में मैजिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है।
अच्छा, अब इस पर आते हैं, ये मैजिकल थिंकिंग है क्या?
देखिए, ये शब्द सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका मतलब है कि जब हम किसी बहुत बड़े दुख या सदमे में होते हैं, तो हमारा दिमाग कई बार अजीब तरह से काम करने लगता है। हम जानते हैं कि सच क्या है, पर फिर भी हम ऐसे काम करते हैं या ऐसी बातें सोचते हैं मानो वो सच हो ही ना।
जैसे कि?
कोई उदाहरण देंगी? हाँ, जैसे डिडियन ने लिखा है, अस्पताल में जब जॉन की मौत हो गई और उनसे कहा गया कि उनके जूते वगैरह ले जाएं, तो डिडियन ने मना कर दिया।
मना कर गया।
क्यों? उनके मन में कहीं गहरे में ये ख्याल था कि जब वो वापस आएगा तो उसे इनकी जरूरत होगी।
ये तो वाकई मतलब तर्क से परे है।
बिल्कुल, बौद्धिक तौर पर वो जानती थी कि जॉन मर चुके हैं, लेकिन भावनात्मक स्तर पर मन इस सच को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था, या शायद धीरे धीरे स्वीकार करने की कोशिश कर रहा था अपने तरीके से।
तो ये कोई पागलपन नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दिमाग का एक तरीका है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव है। असहनीय सच को धीरे धीरे सहने लायक बनाने का। डिडन ने इसी जादुई सोच को, अपनी इस अजीब लगने वाली सोच को बहुत ईमानदारी से अपनी किताब में दिखाया है, बिना किसी लाग लपेट के।
और इसी निजी त्रासदी से जो किताब निकली उसका असर बहुत बड़ा हुआ।
हाँ, इसने दुख और शोक पर होने वाली बातचीत को ही बदल दिया। ये शोक साहित्य में एक मील का पत्थर बन गई। इसने लोगों को समझाया कि गहरे दुख में ऐसी सोच या व्यवहार करना जो तर्कहीन लगे, वो असल में कितना नॉर्मल हो सकता है।
ये डिडियन की क्षमता दिखाती है कि वो अपने निजी दर्द को सबके लिए समझने लायक गहरी बातों में बदल सकती थी।
बिल्कुल, और ये हमें डिडियन के सोचने के तरीके और उनके मूल्यों की तरफ ले जाता है, जो इस किताब में साफ दिखते हैं।
जैसे कि उनका विश्लेषण करने का तरीका।
हाँ, दुख की इस भयानक घड़ी में भी उनका जो रवैया था वो विश्लेषण करने का ही था। वो हर छोटी बड़ी बात की जांच कर रही थीं, हर चीज को समझने की कोशिश में लगी थीं, जैसे कोई केस स्टडी कर रही हो।
हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ रही थीं, दुख पर लिखी दूसरी किताबें खोज रही थीं।
बिल्कुल, वो जैसे दुख को दिमागी तौर पर बौद्धिक रूप से समझना चाह रही थी, लेकिन दुख का जो अनुभव होता है वो अक्सर तर्क और बुद्धि से परे होता है। तो ये बुद्धि और उस भयानक उथल पुथल के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान थी।
और यादें, यादों का क्या रोल था इसमें?
यादें तो बहुत अजीब खेल खेलती हैं। डिडियन लिखती हैं कि कैसे यादें सुकून भी देती हैं और तकलीफ भी। वो बार बार पुरानी घटनाओं को याद करती हैं, जैसे उनमें कुछ फेरबदल करके नतीजा बदल सकेंगी, ये जानते हुए भी कि ये नामुमकिन है। ये एक बेकार पर शायद मन के लिए उस वक्त जरूरी कोशिश थी।
और वो भाषा की सीमाओं की भी बात करती है ना?
हाँ, वो महसूस करती हैं कि दुख के इस गहरे निजी अनुभव को बताने के लिए हमारे पास जो भाषा है, जो रस्मी बातें हैं, सब ठीक हो जाएगा जैसी बातें, वो कितनी अधूरी और खोखली हैं। वो असल दर्द को पकड़ ही नहीं पाती।
और जॉन के साथ उनका वो 40 साल का रिश्ता, वो बार बार उभर कर आता है।
हाँ, बहुत शिद्दत से। वो सिर्फ जीवन साथी नहीं थे, वो लिखने पढ़ने वाले साथी थे, रोजमर्रा की हर बात में साथी थे। एक हम थे जिसका आधा हिस्सा अचानक जैसे गायब हो गया था। उस साझेदारी की कीमत और उसके खोने का मतलब इस किताब में बहुत साफ तौर पर उभरता है।
और इस सब के बीच उनकी ईमानदारी।
हाँ, वो कमाल की है। इस भयानक दर्द और उथल पुथल के बीच भी वो चीजों को जस का तस देखती हैं और पूरी ईमानदारी से लिखती हैं। यहाँ तक कि अपनी जादुई सोच वाले पलों को भी, जो शायद किसी और को शर्मिंदा करते, उन्हें भी बिना किसी छिपाव के दर्ज करती हैं। सच्चाई का सामना करने की हिम्मत।
चलिए, अब उस एक साल के अंदर के उन 3 खास मोड़ों पर बात करते हैं जिन्होंने डिडियन के इस अनुभव को शायद एक नई दिशा दी या उसे और गहरा बनाया।
हाँ,
पहला मोड़ तो शायद वही पल था।
हाँ, यकीनन वही पल। 30 दिसंबर 2003 की शाम, जॉन की अचानक मृत्यु, वो रात के खाने का सीन, वो अचानक गिर पड़ना, वो गहरा सदमा।
वो क्यों इतना बड़ा मोड़ था? मतलब जाहिर है मौत बड़ी घटना है, पर किताब के नजरिए से
जिंदगी कितनी नाजुक है, इसका इससे ज्यादा बेरहम प्रदर्शन और क्या हो सकता था? और यहीं पर मैजिकल थिंकिंग का पहला साफ इशारा मिला, वो जूतों वाली बात। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये असलियत की पूरी समझ को हिला देने वाला पल था।
फिर दूसरा अहम मोड़
वो तब आया जब दोहरा संकट और ज्यादा गहरा गया। क्विंटाना की हालत न्यूयॉर्क में कुछ संभली थी, तो उसे बेहतर इलाज के लिए लॉस एंजलिस ले जाया जा रहा था, लेकिन एलए एयरपोर्ट पर ही वो फिर गिर पड़ी।
ओह नो।
हाँ, और इस बार उसे दिमाग में बहुत गंभीर ब्लीडिंग हुई, मतलब मैसिव सेरेब्रल हेमरेज। तुरंत ब्रेन सर्जरी करनी पड़ी। और सोचिए, ये सब तब हुआ जब डिडियन जॉन की मौत के शुरुआती भयानक सदमे से उभरने की कोशिश ही कर रही थी।
ये तो अविश्वसनीय रूप से क्रूर लगता है।
हाँ, इस घटना ने उनकी लाचारी की भावना को कई गुना बढ़ा दिया। इसने जिंदगी के अप्रत्याशित और कभी कभी बेरहम होने की बात को और पुख्ता कर दिया, और इसने जॉन के लिए दुख मनाने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा उलझा दिया, क्योंकि अब एक और जिंदगी दांव पर थी। ये जैसे एक चोट के ऊपर दूसरी चोट थी। इसने दिखाया कि मुसीबतें कभी कभी अकेली नहीं आती।
और तीसरा मोड़, क्या वो कोई खास घटना थी?
तीसरा मोड़ शायद उतना नाटकीय नहीं था, पर बहुत गहरा और अंदरूनी था। ये उस साल के अंत के आसपास का समय था। डिडियन लिखती हैं कि पहली बार सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं, बल्कि जैसे रग रग में, एकदम सेल्यूलर लेवल पर उन्हें ये एहसास हुआ कि जॉन वापस नहीं आएंगे।
कैसे? मतलब ये एहसास कैसे आया?
शायद कोई छोटी सी बात हुई होगी, जैसे उनके मन में जॉन से कुछ कहने या साझा करने का ख्याल आया और उसके तुरंत बाद ये विचार कौंधा, वो मर चुका है, बस। वो एक पल का यथार्थ बोध।
और इसका असर क्या हुआ?
शायद इसी एहसास के बाद वो जॉन के कपड़े किसी को देने के लिए तैयार हो पाई। ये उस मैजिकल थिंकिंग के धीरे धीरे खत्म होने और असली दुख की दर्दनाक लेकिन जरूरी शुरुआत का निशान था। ये कोई ठीक होना या आगे बढ़ जाना नहीं था, बल्कि उस अंतिम अटल सच्चाई को पूरी कड़वाहट के साथ स्वीकार करना था। वो जो एक अजीब सी उम्मीद का कवच मन ने बना रखा था ना, वो टूट गया।
इस पूरी कहानी से, डिडियन के अनुभव से, जिंदगी और इंसान के बारे में कुछ बहुत गहरे सबक मिलते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल। पहला तो यही कि नुकसान या क्षति का अनुभव हम सबको कभी ना कभी होता है। ये जिंदगी का एक सार्वभौमिक हिस्सा है, लेकिन साथ ही ये अनुभव हर किसी के लिए बहुत ज्यादा निजी, बहुत व्यक्तिगत होता है। हर कोई अपने तरीके से दुख झेलता है, कोई एक सही तरीका नहीं है।
और वो मैजिकल थिंकिंग वाली बात, उससे क्या सबक मिलता है?
उससे ये समझ आता है कि दुख में अजीब महसूस करना, जैसे भ्रम होना, चीजें भूल जाना, एक ही बात बार बार सोचना, ये सब असल में एक आम मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। यह कोई कमजोरी या दिमागी बीमारी का संकेत नहीं है। ये मन का उस चीज से निपटने का तरीका है जिसे वो समझ नहीं पा रहा या सह नहीं पा रहा। तो हमें खुद पर या दूसरों पर इस तरह के व्यवहार के लिए ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए।
और वो जो पारंपरिक सांत्वना की बातें होती हैं।
हाँ, डिडियन ने ये भी साफ किया कि दुख में दी जाने वाली पारंपरिक सांत्वना वो घिसी पिटी बातें, वो अब अच्छी जगह पर है या समय सब घाव भर देगा, ये अक्सर खोखली लगती हैं। वो दुख झेल रहे इंसान को और अकेला महसूस करा सकती हैं, क्योंकि वो उसके असली कच्चे अनुभव से मेल नहीं खाती।
और पहचान पर भी असर पड़ता है।
बहुत गहरा गहरा नुकसान किसी इंसान की पहचान को बदल देता है। डिडियन लिखती हैं कि कैसे वो हम से मैं बनने के संघर्ष से गुजरी। पति या पत्नी की मौत के बाद आप कौन हैं, ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। सामाजिक रिश्ते भी बदल जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग दुख और मौत की बात करने में असहज महसूस करते हैं। इससे दुख मनाने वाले को और भी अकेलापन घेर सकता है।
और ये पकड़े रहने और जाने देने का संघर्ष,
हाँ, वो भी दुख का एक अहम हिस्सा है। एक तरफ मन उस गुजरे हुए इंसान से, उसकी यादों से जुड़ाव बनाए रखना चाहता है, दूसरी तरफ जिंदगी में किसी तरह आगे बढ़ने के लिए मौत की सच्चाई को, उसकी अंतिमता को मानना भी जरूरी होता है। ये कश्मकश लगातार चलती रहती है।
और आखिर में शायद ये कि हम सब कहीं ना कहीं व्यवस्था ढूंढते हैं।
बिल्कुल। ये किताब ये भी दिखाती है कि इंसान का मन कैसे स्वाभाविक रूप से उथल पुथल और अराजकता में भी कोई व्यवस्था, कोई मतलब, कोई पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। हम ऐसी घटनाओं में भी कोई वजह, कोई नियंत्रण ढूंढने लगते हैं जो शायद पूरी तरह अचानक और बेमतलब हो। शायद ये भी एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है, भले ही वो कोशिश आखिर में एक भ्रम ही क्यों ना साबित हो।
तो इस पूरी बातचीत से, इस गहरी किताब से, अगर हमें तीन खास बातें, तीन टेकअवेज निकालने हो, तो वो क्या होंगे? सबसे पहले कोई एक भावनात्मक सीख।
हाँ, मुझे लगता है वो है गहरे दुख में महसूस होने वाला भयानक गहरा अकेलापन और दिशाहीनता। वो एहसास जो डिडियन ने महसूस किया और लिखा भी, कि एक इंसान आपके लिए गायब हो जाता है और पूरी दुनिया खाली लगती है। नुकसान का ये फैलाव, ये खालीपन, उसकी तीव्रता, ये एक बहुत ताकतवर भावनात्मक सच्चाई है जो इस किताब से उभरती है।
और दूसरी कोई बौद्धिक या दिमागी समझ वाली बात।
जरूर, वो ये है कि गहरा दुख सिर्फ उदासी या भावनात्मक दर्द नहीं है, ये हमारे सोचने समझने के तरीके पर, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस पर भी गहरा असर डालता है। मैजिकल थिंकिंग इसी संज्ञानात्मक और न्यूरोलॉजिकल व्यवधान का एक बड़ा लक्षण है। ये कोई तर्क की कमी नहीं, बल्कि एक बहुत कड़वे, असहनीय सच को धीरे धीरे पचाने के लिए दिमाग का एक जरूरी, भले ही अजीब लगने वाला बचाव का तरीका है। ये दुख को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह समझने का नजरिया देता है।
सही है। और आखिर में एक ऐसी सीख जो शायद हम सबके लिए हो, एक यूनिवर्सल इनसाइट,
वो है जिंदगी का बहुत ज्यादा नाजुक होना और ये भ्रम कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। डिडियन की वो लाइन, जिंदगी एक पल में बदल जाती है, इसी परम नाजुकता और अनिश्चितता को रेखांकित करती है। ये हमें याद दिलाता है कि असल में हमारा नियंत्रण कितना कम है, और शायद इससे सबक ये मिलता है कि हमें मौजूदा पलों और रिश्तों की कदर करनी चाहिए और जिंदगी की इस अंतर्निहित अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखना चाहिए। बजाय इसके कि हम हमेशा नियंत्रण के भ्रम में जिएं।
वाकई ये एक ऐसी किताब है जो निजी दुख को सबके लिए समझने लायक सच्चाई में बदल देती है। इसमें कोई झूठी तसल्ली या आसान जवाब नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की सबसे कठिन सच्चाइयों का सामना करने में एक ईमानदार बेबाक साथी की तरह है।
बिल्कुल, पढ़ने में आसान नहीं है, पर बहुत जरूरी किताब है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में, एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए कथा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।